ओम शांति। बाबा के इस तपस्वी भूमि पर आप सबको विशेष तपस्या का गोल्डन चांस मिला है, जिस धरनी पर स्वयं ब्रह्मा बाबा ने, मातेश्वरी ने, हमारी दादी दीदी ने तपस्या की। उनके पवित्र वाइब्रेशन यहाँ की हरेक कण कण से कहते हैं बाबा तेरी याद आती है। तो सबसे पहले मैं आप सबका बाबा के इस बेहद घर में बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। दिल्ली दरबार से आप यहाँ पहुँचे हैं और बाबा दिलवाला है, इसलिए दिलवाला बाबा के साथ दिल की लेन देन करने का सुंदर अवसर मिला है। 3-4 दिन जो आप इस धरनी पर रहेंगे, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे अच्छे योग के गहरे अनुभव करने का एक गोल्डन चांस है। वैसे तो ये बरसात के दिन बहुत सुंदर मौसम के बीच में हम सभी मधुबन निवासी इस हाल में हर वर्ष तपस्या करते रहे हैं। हमारी दादियों ने जब ये 1974 में हाल बना, तब से लेकर के मैं समझता हूँ 83 तक तो डायरेक्ट बाबा का पाठ यहाँ चला इसी स्टेज से, और कई बार रात में भी 2 बजे उठ करके दादी जी ने हम सबको यहाँ पर विशेष ड्रिल कराई, तपस्या कराई है। इसलिए स्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है और आप इस स्थान पर पहुँचे हैं। मैं समझता हूँ कहीं तो मधुबन में पहली बार रह रहे होंगे। काफ़ी समय से शांतिवन बना, तब से मधुबन का चांस बहुत कम लोगों को मिलता है। ये भी बहुत बड़ा भाग्य है जो आप सब बाबा की इस चरित्र भूमि, कर्म भूमि, मधुबन घर में तपस्या करेंगे। हमारा एक यही लक्ष्य रहता है, जब ऐसा समय आता है हम एकांत का अच्छा अनुभव करें, एक के अंत में जाने का अभ्यास करें। भले संगठन है, आपस में 200-250 भाई बहने एक साथ बैठेंगे, आएंगे, बाबा के कमरे में जाएंगे, भोजन करेंगे, लेकिन सब कुछ करते हुए एक बाबा के प्यार में खो जाना, समा जाना, मैं जो हूँ जैसा हूँ और बाबा जो है जैसा है, दोनों को तीसरे नेत्र से देखने का, अनुभव करने का बड़ा अच्छा गोल्डन चांस है। बाह्य जगत की कई बातों से आप सब किनारा करके यहाँ पहुँचे हैं। हम 2-3 बातों का ध्यान रखते हैं, जितना हो सके कम से कम वाचा में आए, मन का और मुख का मौन जितना रखेंगे उतना अच्छे अच्छे अनुभव कर सकेंगे। साथ साथ ये आजकल के साइंस के साधन हैं, मोबाइल, इसको भी हो सके तो कमरे में ही रख के आ जाना और बहुत अच्छी तरह से मैं और मेरा बाबा इसका अनुभव करना। कोई भी तीसरा बीच में ना आए, क्योंकि बाबा कहते हैं अगर तीसरा बीच में आ जाता है तो तीसरा नेत्र ही बंद हो जाता है। तो हम सबको तपस्या करने का अच्छा चांस मिला है और तपस्या के लिए हम सबके पास एक बहुत सुंदर गुफा है। वो गुफा है भ्रकुटी की गुफा, अकाल तख्त, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आत्मा इस अकाल तख्त पर इस भ्रकुटी की गुफा में चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं इस शरीर से न्यारा हूँ, मैं एक लाइट हूँ, माइट हूँ। हमारा त्याग है देहमान का और तपस्या है आत्मअभिमानी स्थिति की। जितना हो सकता उतना अभ्यास करके देखना, जैसे देह अभिमान की नेचर नेचुरल बन गई है। बाबा चाहते हैं मेरे बच्चों की देही अभिमानी की नेचर नेचुरल बन जाए। बोलते चलते कर्म करते एक दूसरे से संबंध संपर्क में आते, ये आत्माएं अपना अपना खेल कर रही हैं, ये आत्माएं पार्ट बजा रही हैं। मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों का आधार लेकर के कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रही हूं। मैं इस शरीर से अलग हूं। जितना हो सके देह और देही, शरीर और आत्मा का अलग अलग अनुभव होने लगे। बहुत समय से इस बॉडी कॉन्शियस में रहे हैं, थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन जब सवेरे सवेरे आंख खुलती है, जो अमृत वेला सारे दिन की फाउंडेशन वेला है, आंख खुलते ही मैं अवतरित आत्मा परमधाम घर से, ब्रह्म घर से, ब्रह्म मुहूर्त के समय इस शरीर का आधार लेकर के श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आई हूँ। आंख खुलते ही अगर सवेरे का पहला संकल्प श्रेष्ठ हो गया तो दिन अपने आप अच्छा हो जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए बाबा ने हम सब के लिए टाइम फिक्स किया है। वैसे तो हम कहें 2 बजे योग करो तो उठ जाएंगे, लेकिन पूरी दिनचर्या बहुत टाइट है आप लोगों की। कई क्लासेज भी होंगी, योग के अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे, इसलिए जो नियमित दिनचर्या है 3:30 बजे उठना है और 4 से 4:45 बजे तक विशेष बहुत सुंदर बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करनी है। उस समय साइलेंस में शांत स्थिति में बैठेंगे तो हो सकता है नींद का प्रवाह आ जाए, क्योंकि नींद का वातावरण होता है। कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास भी नहीं होता, बैठ तो जाते हैं, नियम पालन करते हैं, लेकिन जो अनुभूतियां होनी चाहिए उससे वंचित रहते हैं। इसलिए बहुत अटेंशन देना, अमृत वेले आलस्य रूपी माया प्रवेश न करे। बहुत दिल से, उमंग उत्साह से, खुशी खुशी से बाबा से मिलन मनाना है, रूह रिहान करनी है। अपना भाग्य जो इतना श्रेष्ठ संगम ऊपर भगवान से हम बच्चों को मिला है, नया जन्म मिला, अलौकिक पालना मिल रही है, इतनी ऊंची पढ़ाई, तीनों लोकों की, तीनों कालों की, कर्मों के सिद्धांत, पुनर्जन्म का ज्ञान, आत्मा का, घर का, सूक्ष्म लोक का पूरा स्पष्ट ज्ञान बाबा ने दिया है। मनन करो, चिंतन करो और बाबा से बहुत मीठी मीठी रूह रिहान करो। बाबा आपने इतना श्रेष्ठ भाग्य दिया है जो कलयुग में इतनी आत्माओं में से, करोड़ों में से कितनी छोटी थोड़ी सी छोटे ग्रुप को बाबा ने सेलेक्ट किया। हम उनकी सिलेक्शन में आए हैं, उनकी नजर पड़ी है, कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो भक्ति का फल भगवान डायरेक्ट हम सबको देने के लिए आया है। कितने जन्मों की भक्ति होगी। और बाबा कई बार कहते हैं जो मेरे बहुत पुराने पुराने भक्त हैं उनकी बुद्धि में ही ये ज्ञान यथार्थ बैठता है, जो नए नए हैं वो तो सुन करके चले भी जाते हैं। आप लोग समझते हो कि हम बहुत पुराने बाबा के बच्चे, बहुत पुराने भक्त हैं, ऐसा है लगता है, क्योंकि ये ज्ञान उन्हीं को मिलता है जिन्होंने बहुत पुरानी बाबा की अव्यभिचारी भक्ति की है। या व्यभिचारी भक्ति, एक की भक्ति, एक के प्रति न्योछावर भक्तों ने एक व्रता बन करके भगवान की पूजा की है, आराधना की है, वही बच्चे इस अंतिम समय में जब शिव परमात्मा डायरेक्ट आते हैं उनको ही चुनते हैं और उनको ही भक्ति का फल देते हैं। और भक्ति का फल वास्तव में ज्ञान ही है। जब ज्ञान मिलता है तब सदगति होती है। इसलिए जो ज्ञान मिला है, समझ मिली है, एक बहुत सुंदर लाइट मिली है, रोशनी मिली है, और वो रोशनी मिलने से जो हम अंधकार में ठोकरे खा रहे थे, दर दर भटक रहे थे, उनसे सबसे छूट गए। तो ज्ञान एक लाइट है, और ज्ञान की लाइट जिन आत्माओं के पास है वो संसार में रहते हुए भी मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। ज्ञान अगर हमारे स्वरूप में है, ज्ञान सिर्फ सुन लिया, सुना दिया, वर्णन कर लिया, लेकिन अगर हमने उसके साथ साथ उसका अनुभव कर लिया, ज्ञान हमारे स्वरूप में आ गया, तो ज्ञान स्वरूप आत्मा की पहली निशानी है मुक्त स्थिति का अनुभव। कोई भी बंधन, कोई भी बोझ उस आत्मा को अपनी ओर खींचता नहीं है, क्योंकि बहुत स्पष्ट ज्ञान है कि इस नाटक के अंदर हम सब आत्माएं पार्टधारी हैं और एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता। भले हमें संबंध मिले हैं, व्यवहार में हम आ रहे हैं, लेकिन ये केवल थोड़े समय का इनके साथ हमारा पार्ट है। तो ज्ञान की लाइट से आत्मा मुक्त स्थिति का अनुभव करती है, क्योंकि योग में जब हम बैठते हैं, अधिकतर बाबा के नए पुराने बच्चों की एक कंप्लेन रहती है कि हम बाबा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं लेकिन मन इधर चला जाता है, उधर चला जाता है, बुद्धि भटक जाती है, एकाग्र चित नहीं होती। उसका कारण है बहुत सूक्ष्म बंधन, और वो सूक्ष्म मन के बंधन जहां पर भी कोई चीज का आकर्षण है उस आकर्षण की तरफ बहुत जल्दी बुद्धि भागती है। किसी चीज से, किसी संबंध से, किसी कार्य से अगर बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, तो वो बंधन अपनी तरफ खींच लेता है। और दूसरी तरफ अगर किसी से नफरत है, घृणा है, वैर विरोध है, तो वो भी बंधन है, वो भी खींचता है। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा, जो भगवान को प्रिय है, गीता में कहा है भगवान ने, ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है। तो वो ज्ञानी तू आत्मा, हम सब बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने ज्ञान को यथार्थ समझा है, ज्ञान की लाइट से संपन्न है, और ये ज्ञान की लाइट ही योग की माइट का अनुभव कराती है। इसलिए बाबा कहते हैं, कई कहते हैं आकर के, हमको तो योग ही करना है, हमें ज्ञान नहीं सुनना है। बाबा कहते हैं मुक्ति धाम में जाने वाली आत्मा है, उसको योग ही सिखा दो। लेकिन हम सबको बाबा ने योग का भी ज्ञान दिया है, समझ दी है, क्योंकि जब तक कोई ने अपने आप को पहचाना नहीं है, जब तक स्वस्वरूप में स्थित नहीं है, जब तक स्वधर्म की यथार्थ पहचान नहीं है, आध्यात्मिक धर्म कितने हैं, जाति में धर्म में कितने लोग भटके हैं, भटक रहे हैं। बाबा ने हम सबको देह के धर्मों से, देह की जाति से, देह की जो भी पद पोजीशन से, उसको कहा बच्चे तो पार्ट है, ये तुम नहीं हो। तुम्हारा स्वधर्म तो शांति है, तुम्हारा स्वधर्म पवित्रता है, तुम्हारा स्वधर्म प्रेम है। जब हम अपने उस स्वधर्म में स्थित होकर के अपने स्वस्वरूप को देखते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तो बहुत सहज रीति से जैसा बाबा है वैसा जब हम बन जाते हैं, तो वो समानता योग के अच्छे अनुभव कराती है। भक्ति के अंदर समानता नहीं थी, भगवान को बहुत ऊंचा समझा और अपने को बिल्कुल नीचा समझा। हम सबको बाबा कहते बच्चे पहले समान बनो, समान बनोगे तो मिलन होगा, अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। तो जब सवेरे अमृत वेले हम बैठते हैं बाबा की याद में, तो समान स्वरूप में बैठे, बाबा जो है जैसा है, मैं आत्मा भी उसी स्वरूप में स्थित हूं। तो बैठते समय हर एक अपने भ्रकुटी पर एकदम चमकते हुए सितारे का अनुभव करना, और मैं आत्मा परम धाम घर से जैसे नया पाठ बजाने के लिए अभी अभी अवतरित हुई हूं। पिछली बातें जो योग में विघ्न डालती हैं, बाबा कई बार कहते हैं जो बीत गई उसको बिंदी लगा दो। और योग के लिए बाबा ने 3 बिंदियों का तिलक अपने बच्चों के मस्तक पर लगाया है। भक्ति के अंदर भी सवेरे सवेरे तिलक लगाते हैं, पूजा करते हैं। हम सब बाबा के बच्चे अमृत वेले उठते ही इन 3 बिंदियों के तिलक का अनुभव करें। मैं आत्मा बिंदी इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान, मेरा बाबा वही बिंदु स्वरूप में, ज्योति स्वरूप में, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ। और फिर ये नाटक का पाठ भी बिंदु, जो बीत गया वो बिंदु, उसको भी चिंतन नहीं करना है। इसलिए सवेरे सवेरे आंख खुलते ही रात तक जो कुछ बीता, रात में भी जो बीता, अब मुझे उसका चिंतन नहीं करना। ये अमृत वेले का, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, और ऐसे समय पर अगर बाबा से सवेरे सवेरे गुड मॉर्निंग प्यार से कर लिया, बाबा से दृष्टि ले ली, सकाश ले ली, तो वो सारा दिन आपका श्रेष्ठ और अच्छे से अच्छा हो जाएगा। इसलिए हम हमेशा एक बात कहते हैं, अमृत वेले जब योग करते हैं तो एक जैसे विधि से योग नहीं करो, वैरायटी है। बहुत सुंदर बाबा ने ज्ञान दिया है, वैरायटी पॉइंट्स दी हैं। आत्मा के 7 निजी गुण हैं और 5 स्वरूपों की ड्रिल है। अगर आप वैरायटी करना चाहते हो तो 7 दिन में एक एक गुण का अच्छा अनुभव करो। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान के सागर की संतान हूं, उस ज्ञान का चिंतन करना, मनन करना, अपने स्वरूप को देखना, स्वधर्म को देखना, स्वदेश को देखना, स्वपिता को देखना, ये ज्ञान है। और ज्ञान स्वरूप आत्मा जब उस स्वरूप में स्थित हो जाती है तो बहुत सहज रीति से, जो बाबा चाहते हैं कि एक नेचुरल देही अभिमानी की नेचर बन जाए, जब हम आत्मा को अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा, सब पार्ट अपना अपना प्ले कर रहे हैं, मैं आत्मा हूं, एक अच्छा अनुभव हो जाए, तो ये सवेरे सवेरे पहले शरीर से डिटैच होने का, अलग होने का अभ्यास करो। फिर बाबा ने हमें लाइट की ड्रेस पहनाई है, ये मिट्टी की ड्रेस। जैसे ड्रेस बदलने की आदत होती है, इस वस्त्रों को, इस ड्रेस को बदलना तो सहज है, लेकिन इस मिट्टी की ड्रेस से मैं अपने लाइट की ड्रेस में चला जाऊं। बाबा ने कहा है, बच्चे आप सबके साथ एक सूक्ष्म शरीर रहता है, जो आत्मा जिस प्रकार का चिंतन करती है, जिस प्रकार के विचारों में रमण करती है, उसी विचारों का एक ओरा बनता है जिसको हम आभा मंडल कहते हैं। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसी आभा मंडल के द्वारा कहीं न कहीं जाती है। इस साकार सृष्टि में कोई भी आत्मा शरीर के बिना नहीं रह सकती। शरीर छोड़ने के बाद भी उसको शरीर में जाने के लिए भी शरीर चाहिए। और शिव बाबा भी निराकार रूप में इस सृष्टि पर नहीं आते हैं, वो भी पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं। ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज करके सूक्ष्म वतन बनाते और संपूर्ण ब्रह्मा को साथ लेकर के, उनके लाइट के शरीर को साथ लेकर के प्रवेश होते हैं। ये अनुभव हमारी दादियों ने, संदेशियों ने बड़े अच्छे अच्छे किए हैं। और कई बार अभी भी जब गुलजार दादी के तन में बाबा आए तो बहुतों को ये अनुभव होता था कि दादी जैसे वतन में बाबा के पास जा रही है और बाप दादा दोनों आत्माएं इसमें प्रवेश हो रही हैं। तो शिव बाबा को भी लाइट की ड्रेस लेनी पड़ती है, फिर वो साकार शरीर में, साकार तन में प्रवेश करते हैं। ऐसे ही हम आत्माएं भी अगर बाबा से मिलन मनाना चाहते हैं, जो बाबा वर्तमान समय कहते हैं, बच्चे अब अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन का अनुभव करो। साकार में बाबा आए, इतना समय पालना दी, लेकिन अपने बच्चों को अभी इतना समर्थ बना दिया कि बच्चे उस स्वरूप में स्थित होकर के उस अव्यक्त वतन का, अव्यक्त मिलन का अनुभव करो। तो अव्यक्त वतन का अनुभव करने के लिए हमें इस मिट्टी की ड्रेस को, हड्डी मांस के शरीर को बुद्धि से मर्ज करके अपने लाइट के शरीर को इमर्ज करना, उसमें प्रवेश करना, यह सब बुद्धि की बात। ऐसे नहीं आत्मा को यहां से निकल करके दूसरे शरीर में चली गई। हमारी संदेशियां भी बाबा के पास जाती हैं, मैं बाबा के पास गई, बाबा ने मुझे दिखाया, आत्मा तो नहीं जाती है ना। आत्मा निकलेगी क्या? शरीर से निकल जाएगी तो शरीर तो मिट्टी है, निकलती नहीं है, लेकिन मर्ज और इमर्ज का खेल है। ये संकल्प यहाँ के देह दुनिया के सब संकल्प मर्ज हो जाते हैं और मन बुद्धि के सामने वो दृश्य ऐसे ही मर्ज होते हैं जैसे मैं उनके सामने हूं, और वही आकर के वर्णन करते हैं। तो हम सभी भी एक अभ्यास करें, करके देखना, यहाँ पर इस शरीर से मैं लाइट के शरीर में प्रवेश कर रहा हूं, मेरे इस भ्रकुटी के चारों ओर एक बहुत सुंदर पवित्रता का आभा मंडल है, बहुत शुद्ध पवित्र शरीर है। क्योंकि अच्छे विचारों में अगर हम रहते हैं तो वो बहुत सुंदर पवित्र फरिश्ते की ड्रेस है, और अगर बहुत गंदे नेगेटिव इधर उधर के ख्याल चलते हैं तो वो काली छाया बन जाती है जो दूसरों को डराती है, लेकिन छाया तो हरेक के साथ है। तो हम सब उस छाया को सूक्ष्म शरीर कह रहे हैं, उस सूक्ष्म लाइट के शरीर में जैसे मैं आत्मा प्रवेश कर रही हूं, और उसी लाइट के शरीर से लाइट के वतन में हम जाते हैं। सामने इमर्ज होता है कि जैसे बाप दादा, एक बहुत रमणीक बात आपको सुनाता हूं। एक दिन मैंने गुलजार दादी जी से एक रूह रिहान किया, सुना हो शायद मेरी क्लासेज में। दादी को बोला, दादी आप कभी कभी संदेश लाती हो कि आज बाप दादा आपस में रूह रिहान कर रहे थे। अब बाप दादा का शरीर तो एक ही है, तो कैसे रूह रिहान करेंगे, कैसे आपस में बातचीत करेंगे, क्या मनो एक्टिंग करते हैं क्या? तो दादी तो बहुत शांत स्वभाव थी, आप सब अनुभवी हैं जानते हैं, बहुत कम जवाब देती थी। तो कहती, नहीं नहीं मनो एक्टिंग नहीं होती है। क्या होता है दादी? कहती है कि जब बाप दादा रूह रिहान करते हैं, आपस में कोई वार्तालाप करते हैं, और मुझे अनुभव होता है कि आपस में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों रूह रिहान कर रहे हैं, तो ब्रह्मा बाबा का ये साकार शरीर इमर्ज होता है और शिव बाबा उस लाइट के शरीर में होते हैं। एक ही वतन में है लेकिन एक साकारी शरीर है और एक आकारी शरीर है, और एक आत्मा का वो शरीर है सूक्ष्म वतन में। तो जब शिव बाबा ब्रह्मा में होते हैं तो आकारी रूप में होते हैं, और साकार में ब्रह्मा बाबा फिर उनसे डायलॉग करते हैं, बात करते हैं, और उसी बात को हम सुनते हैं कि बाबा बाबा शिव बाबा से ही कह रहे हैं, शिव बाबा ही बच्चों के लिए कह रहे हैं, तो ये डायलॉग आपस में चलता है। तो हम यहां तो साकारी हैं, अब साकारी मिलन तो पूरा हुआ, अब है आकारी मिलन, और आकारी मिलन में हमारी रूह रिहान हो सके, बाबा से वार्तालाप हो सके। कई बार हम कहते हैं ना, हम तो बहुत कुछ बाबा को बोलते हैं लेकिन बाबा की बातें तो समझ में नहीं आती, बोलता या नहीं बोलता समझ में नहीं आता। हम सुनना चाहते हैं बाबा मेरे लिए क्या कहता है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता बाबा कुछ कह भी रहा है। अब बाबा कोई ये साकारी भाषा को तो यूज नहीं करेगा, नहीं तो कोई हिंदी में करेगा, कोई तमिल में करेगा, कोई कन्नड़ा में करेगा, कितनी भाषाएं बाबा को सीखनी पड़ेंगी। इसलिए बाबा कहता है, मैं तो बच्चों की दिल की भावनाओं को समझता हूं और भावनाओं का जवाब भावना के रूप में दे देता हूं। इसलिए कई बार सुना है बाबा की मुरलियों में, बच्चे तुम मुझे बहुत दिल से याद करो, बहुत प्यार से याद करो, दिल से कहो मेरा बाबा, दिल से कहना माना आपके अंदर वो भावना जागृत हो, किससे बात कर रहे हैं, कौन मेरा बाबा है, कोई साधारण थोड़ी एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति विशेष को थोड़ी हम बाबा कह रहे हैं। ब्रह्मा बाबा को भी हम बाबा आकारी रूप में भले कहेंगे, लेकिन निराकारी रूप में जब हम शिव बाबा से बात करते हैं तो वही स्वरूप, वही लाइट माइट का स्वरूप बाबा का सामने आता है। अब उनसे बात करने के लिए शरीर तो उनको भी चाहिए, अब उनको अपने हाथ तो है नहीं, लेकिन उन्होंने जो श्रीमत दी है वो हाथ है, और श्रीमत प्रमाण अगर हम चल रहे हैं तो बाबा के हाथ और साथ का अनुभव करते हैं। बाबा से हम मीठी मीठी रूह रिहान करें अमृत वेले उठ करके, बाबा आपने मुझे कैसी दुनिया से, कितने विकारों से, कितनी बुराइयों से, कैसे कीचड़ से निकाल करके इतनी शुद्ध पवित्र जीवन दी है, कितना महान बनाया है, लोगों का खान पान, उनका रहन सहन, उनका व्यवहारिक जीवन, उनके अंदर क्या क्या है, आपने उसी कीचड़ से हमें छाट लिया, निकाल लिया, कितना मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। मैं कई बार ऐसे अनुभव किया है, जब मेरा लौकिक में तो जीवन अलग रहा है क्योंकि मैं बचपन से ज्ञान में आ गया, इसलिए जो वर्तमान समय मनुष्य आत्माएं विकारों के अंदर फंसी हुई हैं, इतने व्यसनों के अधीन हैं, गुलाम हैं, अब उनको जब ज्ञान मिलता है तो उनके अनुभव सुनने से ऐसा लगता है सचमुच बाबा ने कितनी बड़ी कमाल की है, जो ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने चेंज किया, परिवर्तन कर दिया। उसने कोई मेहनत नहीं की, प्रयास नहीं किया। कुछ दिन पहले मैं एक जगह गया था, एक भाई मुझे एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर ले जाने के लिए हमारी गाड़ी चला रहा था। कहता भाई साहब एक अनुभव सुनाओ। जरूर सुनाओ, अनुभव सुनने में तो मजा आता है। तो अनुभव सुनाते सुनाते कहता है, भाई साहब मैं तो रावण का बाप था। ने कहा क्या बोला? रावण का बाप था, वो क्या होता है? कहता है जितने रावण के अंदर आए थे ना, उनसे कई गुना ज्यादा मेरे अंदर थे। अब वो सुनाते रहा कि मैं भाई साहब जब घर से निकलता था इतनी पी लेता था, जो मैं कहाँ गिरूंगा, कहाँ पड़ा हुआ हूँ, और अगर निकल गया पी करके तो सब लोग घरों में छिप जाते थे, दुकानें बंद कर लेते थे, बच्चे भागने लगते थे, और जहां पर भी मैं लुढ़क गया वहां पड़ा हूं घंटों, मुझे कोई नहीं पूछता था, इतने मेरे अंदर अवगुण थे, इतनी आदतें खराब हो चुकी थी, लत पड़ गई थी शराब की, सिगरेट की, क्रोध करने की, गालियां देने की, जो मेरा बिजनेस चौपट हो गया, जब जवाहरात का धंधा खत्म हो गया, मेरा परिवार रुल गया, सब लोग मेरे को बहुत गलत दृष्टि से देखने लगे, कोई बात नहीं करे, कोई अपनेपन का स्नेह नहीं दे। लेकिन ऐसे ही एक दिन मैं जाते जाते एक ब्रह्मा कुमारी का बोर्ड देखा और मेरे ऐसे लड़खड़ाते पैर वहां घुस गए, चले गया मैं, कोई ने बुलाया नहीं मुझे। लेकिन मैं जब वहां गया तो वहां का वातावरण, वहां की जो बहन आई उसने इतना स्नेह से मुझे दृष्टि दी, बिठाया, बहुत स्नेह से बात की, ऐसे लगा जैसे जन्म जन्म की मेरी प्यास बुझ गई। और मैं उस दिन से लेकर के बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया, इतना प्यार से, खुशी के प्यार के आंसू आ रहे थे उसको, भाव विभोर होकर के कह रहा था सचमुच भगवान जादूगर है, और उसने मुझे जादू करके बदल दिया। कोई ने कुछ कहा नहीं मेरे को, लेकिन उस स्थान पर मैंने प्रवेश किया और प्रवेश करते ही मेरी विचारधाराएं चेंज हो गई। क्या शक्ति थी, किसने मुझे खींचा वहां पर? कहता है उस दिन से इतना चेंज आई, जो आज मुझे हमारे पूरे समाज में इतना सम्मान देते हैं, सब लोग ज्ञान में चल गए, हमारा बिजनेस इतना ऊंचा बढ़ गया, इतनी प्राप्तियां हो गई, इतना अच्छा परिवार बन गया, बाबा ने मेरे नरक के परिवार को स्वर्ग बना दिया। वैसे कह के रोने लगा। आप समझ सकते हो बाबा को क्या चाहिए, बहुत सच्चे दिल का प्यार चाहिए। बाबा ने कईयों के जीवन की, इसमें भी कई ऐसे होंगे जिनकी दिनचर्या, जिनका खान पान, जिनका रहन सहन जैसे आजकल के लोगों का है, भगवान मिला, बाबा मिल गया, और उसने जो समझ दी, ज्ञान दिया, जीवन ही चेंज हो गया। कई जो घर गृहस्थ में रहते हैं और परिवार के परिवार ज्ञान में आते हैं, उनके घर तो इतने सुंदर मंदिर बन जाते हैं, साफ स्वच्छ, कोई प्रकार की बदबू नहीं, कभी कोई टकराव नहीं, कभी मन मुटाव नहीं, ऐसे लगता है घर ही स्वर्ग बन गया है। हजारों घर ऐसे बाबा ने बनाए हैं। तो जब इतना बड़ा चेंज आया, इतना बड़ा परिवर्तन जीवन में आया, उसको अगर हम अंदर अंदर याद करते हैं कि बाबा आपने क्या कमाल कर दिया, मेरे जीवन को क्या से क्या बना दिया, ऐसी मीठी मीठी बातें करो, रूह ध्यान करो, केवल शांत स्वरूप होके बैठोगे तो नींद आएगी। बहुत दिल से ऐसे प्यार में बाबा कई के बार कहते हैं ना, बच्चे तुम्हारे नैनों में वो प्यार के प्रेम के आंसू आ जाने चाहिए, वो अमृत वेले की याद इतनी स्नेह युक्त, इतनी भावना युक्त होनी चाहिए जो हम उस प्यार में खो जाए, समा जाए। 15-20 मिनट, आधा घंटा तो ऐसे बीत जाएगा जैसे कैसे निकल गया समय, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन सिर्फ युद्ध करते रहो, कई हैं, हमारी दीदी थी ना, दीदी हम लोगों को कहते थे, दीदी का लौकिक नाम गोपी था, दीदी मनमोहिनी की बात कर रहा हूँ मैं, दीदी के मास में आप आए हैं, दीदी जुलाई में ही अव्यक्त हुई थी, 28 जुलाई को। और दीदी की एक बहुत निजी धारणा थी, उनका लौकिक नाम गोपी था, कहती थी तुम लोग बहुत सूखे सूखे हो, उद्धव की तरह योग करते हो, गोपी बन के योग करो। वो योग कराती थी ना हम लोगों को, ऐसे दृष्टि देती थी, तो ऐसे कोई योग करते हैं जैसे आंखें ऊपर चढ़ा दिया, ऐसे ऐसे बैठे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, अमृत डायरेक्ट पी रहे हैं, क्या करते हैं। दीदी बहुत ध्यान खिंचवाती थी, ये क्या योग कर रहे हो तुम, अरे भगवान से बातें करो, मिलन करो, रू ध्यान करो, उनकी शक्ति लो, सकास लो, प्यार में खो जाओ। और दीदी जब बैठती थी तो उनके नयन में एकदम जैसे एकदम गीले नयन होते थे, सूखे नहीं। कहते सूखे क्यों बनते हो, तुम सूखे योगी हो क्या, गीले बनो, थोड़ा सा गोपी बनो, गोपी इतना प्यार से याद करो, रू ध्यान करो, दिल से बातें करो, योग है। योग क्या है, बाबा से बातें करना ही तो योग है, ऐसे सिखाती थी हम लोगों को। और बड़े दिल से कहती थी, आधा पौना घंटा क्या बड़ी बात है, अरे घंटों बीत जाते हैं जहाँ स्नेह होता है, स्नेह ही दो लोग मिल जाते हैं बातें ही करते रहते हैं, और संगम पर तो भगवान हमारा खुदा दोस्त है। एक बार जानकी दादी सुनाती थी, दीदी और जानकी दादी का बहुत आपस में फ्रेंडशिप थी, बहुत नज़दीक थी। तो दीदी ने एक बार जानकी दादी को बोला, तुम बड़ी सूखा योग करती हो, तुमने बाबा को दोस्त नहीं बनाया है, अरे दोस्त से बातें की जाती हैं, क्या सूखा योग ऐसे करके बैठी हो। जानकी दादी अपने अनुभव में सुनाती थी कि दीदी ने मुझे एकदम कहा, अरे क्या बाबा, बाबा बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, नहीं नहीं हमारा दोस्त है, खुदा को दोस्त बना लो। बहुत दिल की बातें माँ बाप से नहीं की जाती हैं, उनको उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट रहता है कि मैं अपनी बात इनको कैसे सुनाऊं। लेकिन जब दोस्ती जहां होती है वहां पर बहुत अच्छी तरह से हर बात की लेन देन होती है। तो संगम युग पर हम सब भगवान को हर संबंध से प्राप्त करते हैं, कभी बेटा भी बना लेते हैं, कभी दोस्त बना लेते हैं, कभी भाई बना लेते हैं, माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी, सतगुरु, सब कुछ है। जब एक ही सब कुछ है तो भिन्न भिन्न रीति से योग को एक जैसा क्यों कर रहे हो। कभी है बहुत अच्छा, मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव होता है, क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ से आया, पढ़ते पढ़ते आ गया मधुबन में, मधुबन में पढ़ाई शुरू हो गई मेरी, टाइप सीखी, सिंधी सीखी, ये किया वो किया, पढ़ता ही रहा। अभी भी मेरे कोई कहता आप कितना पढ़े, हमने कहा पढ़ ही रहा हूँ, अभी कहाँ पूरा हुआ है, इतने साल से पढ़ ही रहा हूँ और सुप्रीम शिक्षक हमको पढ़ा रहा है। कोई कहता था आपके टाइप की स्पीड क्या है, हमने कहा जितनी बाबा के बोलने की स्पीड है उतनी मेरे टाइप की स्पीड है, मेरी टाइप की स्पीड में थोड़ी गिनती करता हूँ, वो जिस स्पीड में बोलेंगे मेरी उंगलियां उसी स्पीड पर डांस करेंगे। कभी एक शब्द भी मैंने बाबा की मुरलियों को, जो बाबा बोलता गया मैं डायरेक्ट टाइप किया, बाद में नहीं। जानकी दादी जो क्लास कराती, यहां करा रही है, मैं ऑफिस में बैठा हूं, कान में हेडफोन लगाया और डायरेक्ट टाइप कर दिया, सिर्फ एकाग्रता की चाहिए। तो अगर बुद्धि एकाग्र है, स्थिर है और बहुत बाबा से स्नेह है सच्चे दिल का, तो योग करना क्या बड़ी बात है। योग क्या है? बहुत दिल से बाबा से रूहरियान करो, बातें करो, 15 मिनट 20 मिनट ऐसी स्थिति में। हाँ, बाबा ने हमें बीच बीच में अपनी पावरफुल योग की स्थिति बनाने के लिए कहा है, क्योंकि वो विकर्म विनाश होते हैं, संस्कार शुद्धिकरण होता है, हमारे विकारों की मैल खत्म होती है, उसके लिए पावरफुल योग चाहिए। लेकिन उसके लिए अलग अलग समय है। अमृत वेले अगर ऐसे बैठ जाओगे तो आनंद ही नहीं आएगा। इसलिए नमाज शाम का समय अगर 1 घंटा योग का मिलता है आपको, इतना फ्रेश समय होता है, कहते हैं फरिश्ते चक्कर पर निकलते हैं, देवताएं सैर पर निकलते हैं। ऐसे समय पर बैठ जाओ 1 घंटा, क्या ऐसे समय बीत जाएगा। 5 से 6 बैठो, फिर क्लास सुनो, फिर 7 से 8 करो, योग करो, बहुत अच्छी स्थिति, शाम के समय बीज रूप की पावरफुल स्थिति आप बना सकते हो। लेकिन सवेरे सवेरे अगर उस स्थिति में बैठ जाओगे तो बहुत अटेंशन चाहिए उस समय, नहीं तो एक अगर सो गया बाजू वाला तो आपके संकल्प उधर ही चले रहेंगे। इसलिए ध्यान देना, यहाँ पर आए हैं बहुत अलर्ट होकर के, बहुत अच्छी तरह से, कमाई जमा करने का समय है, खजानों से भरपूर होने का समय है। और बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे जिस चीज का अभी तक आपने अनुभव नहीं किया है उसका अनुभव करके जाना। अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं है, बाबा कहता है योगी वो है जो परमानंद की अनुभूति करता है। सुख दुख से न्यारी स्टेज ऐसी स्टेज है, आनंद की स्टेज है। अगर हम सच्चे पक्के योगी हैं तो उस परमानंद का अनुभव, परम सुख का अनुभव, कोई भी प्रकार का दुख लहर अशांति की ना आए, एकदम उस स्वरूप में स्थित हो जाए। अव्यक्त वतन का अनुभव, मूल वतन का अनुभव, पूर्व स्वरूप का अनुभव, फरिश्ते रूप का अनुभव, बहुत सारे अनुभव बाबा समय प्रसमय मुरलियों में सुनाते हैं, हम सुन लेते हैं, दूसरे के आगे क्लास भी करा देते हैं, वर्णन भी कर लेते हैं, लेकिन क्या मैंने उसका अनुभव किया है? अनुभव एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। और ऐसे जब चांस मिलते हैं, जब कोई कारोबार नहीं है, बना बनाया भोजन मिलेगा, सब प्रकार की हर प्रकार व्यवस्थाएं हैं, आप सब ऐसा अच्छा अनुभव करके यहां से जाएं। जो अनुभव नहीं किया, कम से कम आत्मिक स्वरूप का अच्छा अनुभव हो जाए। मैं आत्मा इस शरीर को धारण करके चल रही हूं, मैं आत्मा लाइट के शरीर से अभी फरिश्ते ड्रेस को पहन करके जा रही हूं। और सबसे अच्छी बात यह है, जो लाइट वतन की संदेशियां वर्णन करती हैं, इस समय आप माउंट आबू में उसका अनुभव कर सकते हैं। फरिश्तों की तरह फागी के अंदर हम चैर कर रहे हैं, घूम रहे हैं। फागी क्या, सफेद सफेद बादल ही है, और बादल ही वहां दिखाई देते वतन में। तो हम सब यहाँ बादलों की दुनिया में ऐसे सैर करें जैसे मैं फरिश्ता इस लाइट की ड्रेस में घूम रहा हूं। तो फरिश्ते स्थिति का बड़ा अच्छा अनुभव हो सकता है। फरिश्ता शरीर छोड़ के थोड़ी बनना है, अभी अनुभव करना है कि हम शरीर में है लेकिन लाइट के शरीर में है। इसका भान खत्म हो जाए, जो इसका खिंचाव है, कर्मेंद्रियों की जो आकर्षण है, वास्तव में हमारी तपस्या का, कल बाबा की मुरली सुनी होगी, सफल तपस्वी की मूल निशानी है हमारी प्यूरिटी की पर्सनैलिटी बढ़ जाए, वो सफल तपस्वी है। अगर हम तपस्या कर रहे हैं 10 साल 15 साल से योग लगा रहे हैं और अभी तक भी कर्मेंद्रियों की आकर्षण समाप्त नहीं है, दैहिक आकर्षण समाप्त नहीं है, वो खिंचाव बढ़ता जा रहा है, कोई न कोई कर्मेंद्रियां उत्तेजित हो रही हैं, आवेश आ रहा है, आवेग आ रहा है, तो योग सफल तपस्वी कैसे है? अगर सफल तपस्वी है, उसका परमात्मा से सच्चा कनेक्शन जुटा हुआ है, परमात्मा पतित पावन है, परम पवित्र है, और परम पवित्र के संग रहने वाली आत्मा, आज कोई 1 घंटा भी कोई ऐसे गलत संग में चला जाता है तो उसका भी रंग लग जाता है, भाषा चेंज हो जाती है, बोलना चलना बदल जाता है, संग का रंग बहुत जल्दी लगता है। और हम कहते हैं हम बाबा को याद कर रहे हैं, पतित पावन को याद कर रहे हैं, और हमारे को उसका संग का रंग ही न लगे। वो सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ है और हम कमजोर के कमजोर रह जाएं, माना वास्तव में जो बाबा चाहता है कि ऐसा योग हो आत्मा और परमात्मा का वो कंबाइंड स्वरूप, जैसे शरीर में आत्मा कंबाइंड है, आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूं। और कंबाइंड अगर दो घंटा भी उस अनुभव में आप रहो, एक बहुत अच्छा अभ्यास करता हूं आज योग का, मेरे पास समय नहीं है कराने का, लेकिन एक अनुभव करना, मैं आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूं। एक मुरली बाबा की इस पर चली है, जैसे बाबा त्रिमूर्ति है, तीन कर्तव्यों के आधार से उसको त्रिमूर्ति कहा है, आप बच्चे मास्टर त्रिमूर्ति बन करके योग करो। मैं इस भ्रकुटी आसन पर चमकता हुआ सितारा हूं, और अभी बाप दादा को हम अलग नहीं कर सकते, दोनों समान हैं, इसलिए दोनों का आवाहन करके इस भ्रकुटी सी के स्पीच ऐसे बिठा दो जैसे मात पिता के बीच में मैं बच्चा बैठा हूं। वो शक्तियां, उनकी पवित्रता का संग का रंग ऐसे अनुभव होगी जैसे मैं उनके समान हूं। न परम धाम में मैं जा रहा हूं, न वतन में जा रहा हूं, बैठा यही हूं, लेकिन एक आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के लाइट माइट बन करके इस भ्रकुटी पर विराजमान मैं बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। कोई भी इसके अंदर गंदगी नहीं, कोई भी इधर उधर के विचार नहीं है, क्योंकि बाबा कहता है अगर तुम मुझे अपने पास बुलाना चाहते हो तो स्थान भी तो अच्छा चाहिए ना। अगर स्थान गंदा है, कोई आज वीआईपी भी आता तो कितनी सफाई करते हैं, कितनी स्वच्छता रखते हैं, तब उस स्थान पर उसको बिठाते हैं। हमारे पास बड़े बड़े वीआईपी जब आना शुरू हुए, स्थान नहीं था। जब पहली पहली बार जयर सिंह जी राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा मुझे आना है, आए, खास दीदी के कमरे को चेंज किया गया, बाथरूम चेंज किए गए, उनके लिए बेड चेंज किए गए, सब कुछ चेंज करवाया गया, वीआईपी आ रहा है। अब एक वीआईपी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और इतने बड़े वीआईपी के वीआईपीओं के बाप को हम बुला रहे हैं, स्वयं कहते सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ सबके पिता गति सदगति मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हमारा बाबा है, और बाबा को हम कह रहे बाबा आ करके इस आसन पर बैठो, तो क्या इतना शुद्ध आसन है, इतना पवित्र है, इतने अच्छे अच्छे विचार चलते हैं। अगर जरा भी किसी के प्रति कोई गलत भावना लेकर के आप योग करोगे तो गलत भावना ही गंदगी है, इसलिए बहुत शुद्ध भावना से मैं बहुत पवित्र आत्मा हूं, मैं बिल्कुल निर्दोष आत्मा हूं, ये सब निर्दोष आत्माएं हैं। ऐसी शुद्ध बहुत पवित्र वृत्तियों के आधार से जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे और बाबा को बहुत प्यार से आह्वान करोगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपके लिए आसन है, आप आ जाओ, देखो बुलाओ बाबा को, आएगा। ऐसे अनुभव होगा जैसे बाप दादा आकर के इस भ्रकुटी आसन पर बैठ गए, आकर के वो शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, और उनकी लहरों के बीच में मैं आत्मा, कितने अच्छा आनंद का अनुभव कर रही हूं, परमानंद का अनुभव होने लगता है। केवल 10 मिनट भी अगर ऐसी एकाग्रता हो गई, स्थिरता हो गई, क्या सुंदर अनुभव होते हैं, ऐसे लगता है वाचा में आऊं ही नहीं, इस शरीर में आऊं ही नहीं, शरीर से अलग ही रहूं। लेकिन अनुभव एक बार होना चाहिए, अनुभव नहीं है तो योग लगाने में बड़ी मेहनत है, बैठते हैं बुद्धि बार बार बाहर जाती है, मजा ही नहीं आता, आनंद का ही अनुभव नहीं होता। तो मैं तो यही कहूंगा, आपको इतना सुंदर अवसर मिला है, आप यहां पर अच्छे अच्छे केवल एक अमृत वेले नहीं करना, लेकिन सारे दिन में बहुत प्यार से बाबा के कमरे में जाओ, बाबा की कुटिया में जाओ, कैसे बाबा यहाँ बच्चों से मिलते थे, दिलवाला की कुटिया है, बच्चों से बातें करते थे, बच्चों को पत्र लिखते थे, एक एक स्थान की अपनी विशेषता है, और उसी विशेषता के आधार से उनके कमरे में गए, उनकी कुटिया में गए, उनके स्तंभ पर आए, उनके स्त्री हाल में गए, चार धाम बाबा ने बनाए हैं, चारों धामों की सैर करते भी आप ऐसे अनुभव करो जैसे मैं बाबा के साथ साथ चल रहा हूं, बाबा से ही बातें हो रही हैं, मैं बाबा को ही देख रहा हूं। ऐसे मतवाले बनकर के योग करो, मस्ती का योग करो, सूखा सूखा नहीं करना, और अच्छे अच्छे अनुभव करके तीन दिन में आप भरपूर होकर के कहेंगे हमने बहुत कुछ पा लिया। बाबा ने कहा था ना, पहला शब्द बाबा का क्या था, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, आई तार अलफ की, हुआ रेल का राही। तो ब्रह्मा बाबा ऐसे रेल के राही बन गए, एक सेकंड में निर्णय ले लिया धक से, मुझे ये पत्थरों का बिजनेस नहीं करना है। हीरे जवाहरात उनको पत्थर दिखाई देने लगे और लग गए बाबा की धुन, लग गए उनको, पाना था सो पा लिया, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। अगर सचमुच एक बार वो सच्चा अनुभव कर लिया तो ये असार संसार है, भले खेल खेलने के लिए पार्ट बजाने के लिए संसार में रहे हुए हैं, लेकिन कोई भी संसार की वस्तु, संसार का व्यक्ति मुझे आकर्षित नहीं कर सकता। बाबा संसार बन गया, बाबा को जिसने अपना संसार बना लिया, ये संसार उसको असार लगता है, कोई भी दैहिक कोई भी इंद्रिय आकर्षण नहीं रहती, ना आंख आकर्षित करती है, ना मुख, न कान, न हाथ, न पैर, एकदम सब कर्म इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती है। बाबा यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा इस संगम पर स्वराज्य अधिकारी बन जाए। वैसे भी कहते हैं राजा बच्चे हैं, लेकिन राजा किसका, दूसरे पर राज्य थोड़ी करना है, अपने पर राज्य करना, जो चाहूं वही संकल्प करूं और जितना समय चाहूं उस संकल्प में स्थित हो जाऊं, यह स्व पर राज्य है। संकल्पों पर, मन पर राज्य है, बुद्धि पर राज्य है, संस्कारों पर राज्य है, इन आंखों पर, कानों पर, इस मुख पर, इस हाथों पर, हर कर्म इंद्रिय का मैं राजा हूं। स्वराज्य अधिकारी स्थिति तभी बनेगी जब बहुत अच्छी आत्मिक स्थिति में आप स्थित होंगे और बाबा के संग का रंग लग जाए। वह शरीरी है, एक है निराकार और एक है आकारी, अब दो हमारे बाबा हैं, और दोनों कहते तो मेरे समान बन जाओ। शिव बाबा कहता तुम मेरे समान अशरीरी बनो, निराकारी बनो, और ब्रह्मा बाबा कहता तुम मेरे समान अव्यक्त बनो, फरिश्ता बनो। तो यही दो अनुभव कर लेना कि हम सब अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में बाबा के बिल्कुल समीपता का अनुभव करें, उनकी शक्तियों का अनुभव करें और उनकी ही शक्तियों से उनके समान स्थिति में स्थित हो जाए। जैसा बाबा है, बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे भी मेरे समान बन जाए। तो हम सब समय निकाल करके आए हैं, अच्छा है इस समय का लाभ लेना और समान स्थिति का अनुभव करके। फिर आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपकी वृत्तियों से वायुमंडल चेंज होगा। जिस स्थान पर आप जाएंगे, आपकी श्रेष्ठ वृत्तियां, आपकी शुद्ध मनसा उस स्थान के वातावरण को परिवर्तन कर देगी। आज ये स्थान जो इतना चार्ज है, इतना इसका शक्तिशाली वातावरण है, बड़ों की वृत्तियों का प्रभाव है, उन्होंने ऐसी तपस्याएं की है, ऐसी वृत्तियां रखी हैं, जो वृत्तियों से वाइब्रेशंस बने, वाइब्रेशन से पूरा वायुमंडल चेंज हो गया। और बाबा भी यही चाहते हैं कि आप कलयुग के वातावरण में रह करके उसके प्रभाव में आने की बजाय आप इतने शक्तिशाली बन जाओ जो आपका प्रभाव वातावरण को चेंज कर दे, और वो शक्तिशाली बनने का यही समय है। तो हम सब बाबा के समान बिल्कुल सब संकल्प एक में समा दो, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, मैं लाइट हूं, मैं एक माइट हूं, एक चैतन्य शक्ति हूं और बाबा के समान हूं, उनका आवाहन करो, उनके साथ बैठ करके उनसे शक्ति लो, सकास लो, ऐसे अनुभव करो जैसे मैं बिल्कुल हल्का उनके समान बन गया। ये अनुभव करने के लिए तपस्या में आप आए हैं, तो हो सके तो जितना समय मिले करके अनुभव जाना, बिना अनुभव के नहीं जाना, ठीक है। एकांत में बैठो, एक की लगन में मगन हो जाओ। जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है कि आत्मा संपूर्ण पावन बन जाए, ब्रह्मचर्य व्रत ही नहीं है लेकिन व्यर्थ से भी आत्मा मुक्त हो जाए, कोई भी विकारी पति संकल्प मुझे आत्मा को स्वप्न में भी टच न करे, अब उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। नहीं तो अगर जरा भी साधारणता है, जरा भी लौकिकता है, तो वो स्टेज नहीं बनती। ठीक है, थोड़े समय का अनुभव होता है, फिर उन्हीं संकल्पों में हम चले जाते हैं। तो हमारा समय, हमारा संकल्प, हमारी श्वास सब सफल हो, कुछ भी व्यर्थ न जाए। तो व्यर्थ को हम समाप्त कर लें, उसके लिए ऐसी तपस्या चाहिए। तो मनसा इतनी पवित्र शुद्ध हो जाए, और जो सबसे बड़ी समस्याएं हमारे संगठन में आती हैं उसका कारण है हमारी वाणी पर कंट्रोल नहीं है। अगर वाणी बड़ी सरल मधुर संतुष्टता वाली हो जाए तो हमारे संगठन बहुत मजबूत हो सकते हैं। तो वाणी की पवित्रता माना, वाणी की मधुरता, वाणी की सरलता, वाणी का सम्मानजनक व्यवहार। तो वाणी की पवित्रता माना, हम वाणी पर इतना कंट्रोल कर लें कि ऐसे नहीं जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया, जिसको आया बोल दिया, उसे संबंध बिगड़ रहे हैं। और कर्म की पवित्रता है कि मैं आत्मा निमित्त हूं, निर्माण हूं, कराने वाला करा रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, कराने वाला करा रहा है, पीछे से बैकबोन होकर के करा रहा है, उसने मुझे निमित्त बनाया है, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, कराने वाला वो है, करावनहार करा रहा है। इसी स्मृति से ब्रह्मा बाबा संपन्न बने। और हम सबको भी कहते हैं बच्चे, इसी स्मृति से रहो, कर्म में कभी भी मैंपन ना आ जाए, मैं और मेरे की बलि चढ़ा दो। ये सब बाबा तेरा है, सब तेरा है, ऐसे तेरा तेरा कह करके इन सब प्रकार के बंधनों से हम मुक्त हो सकते हैं, पवित्र और योगी बन सकते हैं। तो हम सब संपूर्ण पावन बन करके बाबा के समान बने, बाबा के साथ उड़ करके बाबा के वतन में चलें। एक मुरली में पॉइंट आई थी, 7:30 बज रहा है, कि अगर धर्मराज की पुरी से बचना है तो रोज रात को अपना सारा हिसाब किताब बाबा को सुना देना। तो आप सब अपना सारा हिसाब किताब बाबा को देना और बाबा से बिल्कुल खाली होकर के सब शक्तियां जमा कर लेना, तो धर्मराजपुरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सब बाबा के बच्चे ऐसी तपस्वी बन करके बाबा की शक्तियों का अनुभव करें, उनकी सकास का अनुभव करें, अनुभव करें और दूसरों को अनुभव करा दें। ठीक है, ऐसी तपस्या करना। चलो 5 मिनट के लिए अशरीर स्थिति का